नमस्कार। कुछ किताबें होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, वो एक तरह का धमाका करती हैं
समाज में, साहित्य में
और पढ़ने वाले के दिमाग में भी।
हाँ बिल्कुल।
आज हम एक ऐसी ही किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसने 1969 में छपते ही मतलब अमेरिकी साहित्य में एक भूचाल ला दिया था।
फिलिप रॉथ की पॉटेनॉइस कंप्लेंट।
जी।
और फिलिप रॉथ भी कोई आम लेखक नहीं थे, वो अमेरिकी यहूदी समाज के ऐसे चितेरे थे जो हर तस्वीर को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देते थे।
सही बात है, उनकी लेखनी की खासियत ही यही थी, इंसान के मन की गहराइयों में उतरना, समाज पर तीखा व्यंग्य करना
और उन विषयों पर बात करना जिन पर लोग बोलने से भी कतराते हैं।
बिल्कुल। और पॉटेनॉइस कंप्लेंट तो मानो उनके इसी साहस का सबसे बड़ा सबूत है। ये किताब उस दौर में आई जब अमेरिका में यौन क्रांति और क्या कहते हैं पुरानी मान्यताओं के खिलाफ एक नई लहर चल रही थी।
और इस किताब की सबसे अनोखी बात इसका अंदाजे बयां है।
हाँ सोचिए, पूरी की पूरी किताब एक ही इंसान का लंबा न रुकने वाला मोनोलॉग है
जो वो एक मनोचिकित्सक के सोफे पर लेटकर बोल रहा है,
और हम मतलब पाठक उस खामोश डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं जो बस सुन रहा है।
और सुना कौन रहा है? 33 साल का अलेक्जेंडर पॉटनॉय।
बाहर से देखें तो एक कामयाब इंसान।
हाँ, न्यूयॉर्क शहर में मानवाधिकार विभाग का असिस्टेंट कमिश्नर, एक होनार वकील, अपने आप प्रवासी माँ बाप का चमचमाता सपना।
लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी परत है।
बिल्कुल।
अंदर से पॉटनॉय एक तूफान से गुजर रहा है, वो अपनी कंप्लेंट या शिकायत से परेशान है।
और ये शिकायत किसी एक चीज से नहीं है।
नहीं, ये एक दिमागी जंग है जो उसकी परवरिश, उसके यहूदी होने के एहसास और अपनी यौन इच्छाओं को खुलकर जीने की बेताबी के बीच लगातार चल रही है।
तो चलिए आज इसी शिकायत की जड़ों को खोदते हैं।
हाँ, और समझने की कोशिश करते हैं कि पॉटनॉय की असली दिक्कत क्या है।
पॉटनॉय की कहानी शुरू होती है उसके बचपन से, न्यू जर्सी के एक घर में जो घर कम और
प्रेशर कुकर ज्यादा था।
हाँ बिल्कुल। और इस प्रेशर कुकर को चलाने वाले थे उसके माँ बाप,
जिन्हें वो अपने पागलपन का जिम्मेदार मानता है ना?
हाँ। और इस कहानी में माँ सोफी पॉटनॉय का किरदार तो जैसे हर जगह छाया हुआ है।
पॉटनॉय की नजर से देखें तो वो एक ऐसी माँ है जिसका प्यार और दुलार भी एक तरह का
अत्याचार है।
हाँ, वो अपने बेटे को कंट्रोल करने के लिए हर हथकंडा अपनाती हैं। इमोशनल ब्लैकमेल, बीमारी का बहाना
और सबसे बढ़कर खाना।
खाना तो जैसे उनका सबसे बड़ा हथियार था।
बिल्कुल। एक बहुत ही मशहूर और अजीब सा सीन है किताब में। छोटा एलेक्स खाने से मना कर रहा है और उसकी माँ हाथ में किचन का चाकू लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है।
क्या?
हाँ, और चिल्लाकर कहती है, इसे खाओ वरना मैं तुम्हें इसी चाकू से मार दूंगी।
सोचकर ही अजीब लगता है, एक माँ अपने बच्चे से ऐसा कैसे?
ये सीन उनके पूरे रिश्ते का प्रतीक बन जाता है।
सही बात है, यहाँ प्यार कोई नर्म एहसास नहीं बल्कि एक जबरदस्ती है, एक ताकत है जिससे पॉटनॉय का दम घोटता है।
लेकिन क्या सोफी सिर्फ एक विलन है?
ये भी एक सवाल है। या उसके इस बर्ताव के पीछे उन अप्रवासी माँ बाप का डर छिपा है जो एक नई दुनिया में अपने बच्चे को हर हाल में सुरक्षित देखना चाहते हैं।
ये बात तो है, वो चाहती है कि उसका बेटा इस दुनिया की हर बुरी नजर से बचा रहे, और शायद यही चाहत एक अजीब से कंट्रोल में बदल जाती है।
अच्छा।
लेकिन इस प्रेशर कुकर में सिर्फ माँ ही नहीं थी, पिता भी तो थे, जैक पॉटनॉय।
हाँ, तो माँ अगर एक तूफान है तो पिता का क्या रोल है इस कहानी में? वो तो जैसे हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते हैं।
बिल्कुल। जैक पॉटनॉय एक मेहनती बीमा एजेंट है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनकी पुरानी कब्ज की बीमारी।
अच्छा।
वो अपनी पत्नी के सामने हमेशा दबे सहमे से रहते हैं और दुनिया का सामना करने से डरते हैं।
और उनकी वो कब्ज की बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं है, है ना?
नहीं,
वो असल में उनकी दबी हुई जिंदगी उनकी भावनात्मक घुटन की एक बहुत बड़ी निशानी है।
सही कहा।
वो उस कमजोरी और बेबसी का प्रतीक है जिससे एलेक्स सारी जिंदगी भागना चाहता है।
और इसी घुटन से भागने के लिए जैसे ही एलेक्स थोड़ा बड़ा होता है उसे बगावत का एक रास्ता मिलता है।
एक ऐसा रास्ता जिस पर उसकी माँ का कोई कंट्रोल नहीं था।
हाँ, और वो रास्ता था हस्तमैथुन। ये किताब का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद भी है और
मजेदार भी। हाँ, रॉथ ने इसे बिना किसी शर्म के बहुत ही खुलकर और मजाहिया अंदाज में लिखा है।
पॉटनॉय बताता है कि कैसे ये उसकी जिंदगी का एकमात्र निजी कोना था।
लेकिन ये बगावत भी एक अजीब शक्ल ले लेती है। वो जो फ्रिज में रखे लिवर के टुकड़े के साथ अपने यौन प्रयोग का जिक्र करता है वो सुनने में भले ही घिनौना लगे,
लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है।
हाँ,
लिवर जो घर में पोषण का प्रतीक है उसे वो अपनी यौन कुंठा निकालने का जरिया बना लेता है।
मतलब परिवार से मिले पोषण को ही वो अपनी बगावत से दूषित कर रहा है।
बिल्कुल सरी।
यहीं पर सेक्स एक बगावत के तौर पर का थीम मजबूत होता है।
एलेक्स के लिए सेक्स किसी से जुड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी माँ की बनाई दुनिया के नियमों को तोड़ने का एक हथियार है।
पर मुश्किल ये है कि यह हथियार चलाने के बाद वो अपराध बोध और शर्म से भर जाता है। तो ये कैसी आजादी हुई जो आपको एक और कैद में डाल दे?
सही बात है। और ये बगावत तब और बढ़ जाती है जब वो कॉलेज के लिए घर से दूर जाता है।
अच्छा,
अब वो खास तौर पर गैर यहूदी लड़कियों के पीछे भागता है जिन्हें वो शिक्षा कहता है।
ये लड़कियां उसके लिए किसी वर्जित फल की तरह हैं ना?
हाँ, जिन्हें पाना उसकी बगावत की सबसे बड़ी जीत है।
तो क्या ये सिर्फ बगावत है या इसके पीछे कुछ और भी है?
मुझे लगता है ये अमेरिका में एक यहूदी होने की पहचान के संकट से भी जुड़ा है।
हाँ।
वो इन लड़कियों से प्यार नहीं करता, वो उनके गैर यहूदी होने के ख्याल से आकर्षित होता है।
उन्हें जीत कर वो मानो अपनी यहूदी जड़ों को, अपनी माँ की दुनिया को नीचे दिखाना चाहता है।
बिल्कुल, लेकिन वो कभी भी उनके साथ कोई सच्चा रिश्ता बना ही नहीं पाता। वो लड़कियां उसके लिए इंसान कम और उसकी जीत का प्रतीक ज्यादा होती हैं।
और इसी सिलसिले का सबसे बड़ा ड्रामा शुरू होता है मैरी जेन रीड के साथ उसके रिश्ते से।
हाँ, वो उसे मजाक में द मंकी बुलाता है।
द मंकी।
मैरी जेन खूबसूरत है, बिंदास है, यौन इच्छाओं को लेकर बहुत खुली हुई है, लेकिन दिमागी तौर पर थोड़ी अस्थिर है।
शुरू में तो उनकी जिंदगी किसी तूफान की तरह होती है जिसमें सिर्फ रोमांच और सेक्स है।
यानी वो सब कुछ जो पोर्टनॉय को अपनी जिंदगी में चाहिए था। आजादी, खुलापन, कोई रोक टोक नहीं।
लेकिन फिर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है ना?
हाँ, बहुत अजीब। जल्द ही पोर्टनॉय का बर्ताव बदलने लगता है। वो मैरी जेन को कंट्रोल करने लगता है,
उसे पढ़ाने लिखाने की, अपने सांचे में ढालने की कोशिश करता है।
हाँ, वो उससे वैसी ही उम्मीदें पालने लगता है जैसी उसकी माँ उससे पालती थी। मतलब उसका बर्ताव हूबहू अपनी माँ जैसा होने लगता है।
ये तो बहुत बड़ी विडंबना
है ना?
जिस कंट्रोल से वो सारी जिंदगी भागा, आखिर में वो खुद वही कंट्रोल अपनी प्रेमिका पर थोपने लगता है।
वो उस इंसान को ही तोड़ने लगता है जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो उससे बचाएगी।
और अंत में वो उसे तोड़ भी देता है।
हाँ, रोम में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई के बाद वो उसे छोड़ देता है।
मैरी जेन उसके लिए बस एक पर्दा बनकर रह जाती है जिस पर वो अपनी सारी इच्छाएं, अपनी नफरत और अपनी उलझनें फेंकता रहता है।
वो एक ही वक्त में मैरी जेन की यौन आजादी से प्यार भी करता है और उसकी कम अकली से नफरत भी।
इस रिश्ते के बाद तो वो पूरी तरह बिखर गया होगा।
पूरी तरह। और इस बिखराव की हालत में वो एक आखिरी कोशिश करता है खुद को जोड़ने की। वो इसराइल जाता है,
अपनी जड़ों की ओर।
हाँ, उसके लिए ये एक तीर्थ यात्रा जैसी है, खुद को ठीक करने का एक मौका।
उसे लगता है कि शायद एक मजबूत, आत्मविश्वास से भरी इसराइली लड़की ही उसकी हर समस्या का इलाज है।
बिल्कुल। और वहाँ उसे ऐसी लड़की मिलती भी है, नाओमी, जो एक सैनिक है।
अनी का सबसे क्रूर मजाक सामने आता है।
वो क्या?
जब वो निर्णायक पल आता है, जब वो नाओमी के साथ होता है, तो पोर्टनॉय खुद को पूरी तरह से नपुंसक पाता है।
क्या कहने, ये तो जबरदस्त व्यंग्य
है ना?
यहूदी ताकत और गौरव की धरती पर वो महान यौन विद्रोही,
जिसने अपनी पूरी पहचान ही अपनी यौन शक्ति पर बनाई थी,
वो शक्तिहीन हो जाता है।
उसकी सारी बगावत, सारी जीतें, सब मिलकर उसे इसी एक पल पर ले आती हैं जहां उसकी अपनी विरासत ही उसे हरा देती है।
जिस सेक्स को उसने अपनी यहूदी पहचान के खिलाफ हथियार बनाया था, उसी पहचान के केंद्र में आकर वो हथियार बेकार हो गया।
और इसके बाद उपन्यास वहीं खत्म होता है जहां से शुरू हुआ था, मनोचिकित्सक के सोफे पर।
अच्छा।
इस लंबे पागलपन से भरे, थका देने वाले कबूलनामे के बाद पोर्टनॉय चुप है।
और फिर
किताब के आखिरी शब्द पोर्टनॉय के नहीं है, वो उसके डॉक्टर के हैं, जो पूरी किताब में पहली और आखिरी बार बोलता है।
और वो क्या कहता है?
वो बस इतना कहता है, तो अब हम शायद शुरू कर सकते हैं। हाँ,
कमाल है,
है ना?
मतलब हमने जो कुछ भी पढ़ा या सुना वो तो सिर्फ भूमिका थी,
प्रस्तावना थी।
असली इलाज, असली काम तो अब शुरू होगा।
हाँ,
ये एक लाइन पूरी कहानी को एक नया मतलब दे देती है।
बिल्कुल। ये अंत हमें बताता है कि पोर्टनॉय की समस्याएं कितनी गहरी है, कि ये पूरा तूफान सिर्फ एक शुरुआत भर है।
ये अंत एक तरह से निराशाजनक भी है।
हाँ।
और इसमें एक हल्की सी उम्मीद भी है।
हाँ, निराशा इसलिए कि लड़ाई अभी बहुत लंबी है, और उम्मीद इसलिए कि कम से कम अब एक शुरुआत तो हो सकती है।
तो कुल मिलाकर ये किताब पहचान, अपराध बोध और एक समाज में घुल मिल जाने की जद्दोजहद जैसे विषयों की चीर फाड़ करती है।
ये दिखाती है कि कैसे कोई इंसान अपने अतीत के खिलाफ लड़ते लड़ते इतना खो जाता है कि उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बचती।
वो हमेशा किसी चीज के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा है, अपनी माँ, अपना धर्म, अपनी परवरिश, लेकिन वो खुद क्या है
ये उसे कभी पता ही नहीं चलता।
ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का प्यार भी जब उसमें हद से ज्यादा चिंता और कंट्रोल करने की इच्छा घुल जाती है तो वो एक जहरीली ताकत बन सकती है।
एक ऐसी ताकत जो बच्चे के दिमागी विकास को हमेशा के लिए पंगु बना सकती है।
और ये हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल भी छोड़ जाती है, क्या कोई इंसान अपने बचपन की बनाई दिमागी कैद से कभी सच में आजाद हो सकता है?
या फिर हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी शक्ल में अपने बचपन के जख्मों को ही बार बार जीते रहने पर मजबूर हैं?
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।